मुकाबले में किसी और फिक का पैरोकार कहेगा इसको मेरे लिए मेरी फिक होनी चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि 97% अगर मुसलमान हैं तो मुसलमानों को मुसलमानों के अपने अकीदे और अपने नजरिए के मुताबिक कानून मिलना चाहिए, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून नहीं।
ठीक है।
अब यहां पर हमारी मुश्किल यह है कि चूंकि दीन जब फैला औलिया के जरिए से फैला, मसाजिद ने जो तरबियत गाहें हैं, हमारी मस्जिद सबसे बड़ी तरबियत गाह है, ठीक है, मदरसा इल्मी हवाले से तरबियत गाह है, इन इदारों ने चाहे वो मस्जिदें हैं वो हमारे मदारिस हैं, वो रोल जो मुस्बत था कौम को तरक्की और तकामुल की तरफ लेकर जाने वाला रोल था, वो रोल उस तरह से अदा नहीं किया जिसके नतीजे में माशरे में तब्दीली आती। आज अगर आपको माशरे के अंदर नफरत मिलती है तो ये नफरत कहीं ऊपर से नहीं आती, हमारे इन्हीं इदारों में मौजूद ऐसे लोगों की तरफ से आती है जिनका इल्म कम होता है, मारिफत कम होती है, और उनके पेट का जरिया ये इसी तरह के तफरके हैं। आज अगर आप कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल की ईद और इतनी बड़ी ईद के मौके पर पूरे पाकिस्तान के अंदर मोबाइल सर्विसेज बंद हैं, धमाके का खौफ है, एक खौफ की फजा में जुलूस निकाले जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन साथ में धमाकों का इंतजार भी है, तो इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हमने लुकी जो तरबियत नफी हवाले से, अकली हवाले से, फिक्री हवाले से, नजरियाती हवाले से करनी थी वो तरबियत उस तरह से नहीं की। कुरान को हमने सिर्फ मैयतों के सवाब का जरिया बना लिया, हमने सिर्फ तराबीह का जरिया बना लिया, लेकिन कुरान की उन आयात के अंदर जो हमारे लिए हिकमत अमली थी, अमल के नमूने थे, उनको अपनाने से हमने गुरेज किया। और जो हमारे उलमा, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने भी फरमाया कि उलमा उम्मती अफजलू मिन अनबिया बनी इसराइल, मिन अनबिया बनी इसराइल का मतलब क्या है? बनी इसराइल के नबियों से मेरी उम्मत के उलमा अफजल हैं, लेकिन क्या वो उलमा जो इस वक्त जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं? नहीं, वो जो पाकीज़ा थे, वो जिन्होंने उस किरदार को जिंदा किया, वो जिन्होंने माशरे के अंदर से नफरतों को खत्म करके मोहब्बतों को फुलाने की कोशिश की।
प्रोफेसर साहब, कैसे ये जो नफरतों की इस वक्त जो सूरत हाल का हमें सामना है इसका खात्मा से मुमकिन? अब देखें ना, सूबह खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान में एक लड़ाई भी जारी है, जो तालिबान है वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो भी शरीयत के निफाज के लिए, वो मुसल्ला कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोगों की जमात इस्लामी का क्याम ही जमात इस्लामी है, मस्जिद वहादतुल मुस्लिमीन है, इतनी ज्यादा तंजीमें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी है वो मुसलमान ही है।
जिस तरह अल्लामा साहब ने ये बात फरमाई कि मौजू, यानी मैं नहीं चाहता कि हम डिट्रैक्ट हो जाएं,
सही,
बहुत पेचीदा भी है और बहुत लंबा और वसी भी है कि इसमें कौन 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 से किरदार हैं, क्या किरदार कौन अदा कर रहा है, जो कालादम है वो मौजूद भी रखते हैं और फिर वो एजेंसियों के दस्तरस में भी हैं और चूटे भी फिर रहे हैं, इसलिए मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का हवाला आपने दिया, अलामा साहब ने जो जवाब दिया अमलन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन नजरन बहुत सारी बातें हैं, आईनी तौर पे इस्लामी नजरियाती कौंसिल को बहुत सारे इख्तियारात हासिल हैं और इस्लामी नजरियाती कौंसिल पे मुश्तमिल जो दफात हैं आईन के, दो सौ सत्ताईस से दो सौ इकतीस तक दफात, ये बुनियादी दफात है, यानी ये 14 अगस्त 1973 को जो दस्तूर नाफिज हुआ ये वही दफात है, इसमें कोई तब्दीली, मामूली सी तब्दीली लाई गई लेकिन कोई बड़ी तब्दीली इसमें नहीं है। इन दफात रू से इस्लामी नजरियाती कौंसिल को बहुत ज्यादा इख्तियारात भी हासिल है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बहुत सारा काम भी किया है, लेकिन हुकूमत पे जो जिम्मेदारी आयद होती है, और मैं सिर्फ एक हुकूमत, एक पार्टी की हुकूमत का जिक्र नहीं कर रहा, 73 से लेके अब तक जितनी भी हुकूमतें बरसर इक्तदार रही है उनका जो फर्ज था इन दफात की रू से वो फर्ज इन्होंने अदा नहीं किया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने तमाम कवानीन का जायजा लिया है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुसविदात तैयार किए हैं और ये सब कुछ पढ़ा है,
ठीक है,
और इनमें ये बात लिखी गई है कि फाइनल रिपोर्ट भी पार्लियामेंट के सामने पेश होगी और फिर हर साल पार्लियामेंट के सामने और सूबाई असेंबलियों के सामने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की रिपोर्ट पेश हुआ करेगी। आज तक कोई एक भी रिपोर्ट पेश नहीं हुई।
ये
असल में वो बात है कि इस निजाम को और कवानीन को اسلامائز کرنے کے لیے آئین نے جو طریقہ کار دیا ہے اس پہ ایک حد تک عمل ہوا بھی ہے. حکمران ہمارے اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے عناصر سر اٹھا لیتے ہیں اور وہ مسائل پیدا.
میں اس کو کمپلیٹ کروں جو پروفیسر صاحب نے بات کی اور بڑی خوبصورت بات ہے.
نقطہ یہ بھی اینڈ میں رکھیں گے کہ ہمیں آج جب ہم اس نشست کو برخاست کر کے اٹھیں تو کیا کچھ اپنے سامنے اہداف کیا رکھنے چاہیے.
دیکھیں جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا بالکل بجا فرمایا, بالکل 100% درست فرمایا. میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس تحریک کو روکنے کے لیے, جب یہاں پر کام ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی طرح کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, 9000 صفحوں سے زیادہ اس وقت مسودات موجود ہیں لیکن آج تک کسی نے نہ اس کو اہمیت دیا ہے, نہ اس کو کسی جگہ پیش کیا ہے, نہ اس پر عمل درآمد کی کوئی بات کیا ہے. صرف اپنی بارگیننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ورنہ نفاذ کا جو ول ہے اس کے لیے وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اب ہم جب حل کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ہمیں کئی حوالوں سے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر ترقی اور تکامل اور نمو چاہتے ہیں اپنے معاشرے کی, تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایجوکیشن کے سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم اس وقت ہے اس میں اتنی زیادہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے جب آپ کا ایک جوان موجودہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ دوسرے دروازے سے ڈگری لے کر نکل رہا ہوتا ہے تو اسلام سے نہ صرف دور ہوتا ہے بلکہ بیزار ہوتا ہے. اور پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ جو فرقہ پرست عناصر میدان میں اتر آتے ہیں وہ پھر اس خلا کو اس طرح سے بھرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو معاشرے کے اندر انہی جوانوں کے ذریعے سے نفرتیں پھیلتی نظر آتی ہیں. لہٰذا ان دونوں حوالوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشن کا نظام ہے وہ بھی بہتر ہو اور اس میں ایک ایسا نصاب متعارف کروایا جائے جس کے اندر آپ کی جو جدید آپ کے علوم ہیں وہ تو ہوں ہی, ان کے ساتھ آپ کے پاکستان کے اندر رہنے والے تمام مسالک کے نظریات بھی پڑھائے جائیں. اگر یہ پڑھائے جائیں تو پھر یقینی طور پر ذہن کھلے گا, ایک دوسرے کو قبول کریں گے,
تنگ نظری
ختم ہو جائے گی, اس کے نتیجے میں نفرتیں جنم نہیں لیں گی. پھر کسی ایسے مولوی صاحب کو موقع نہیں ملے گا جو دوسروں کو اپنے نظریات کی بنیاد پر تکفیر اور باقی اعمال انجام دیتا ہے.
راجہ صاحب, اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے رول کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور نظام تعلیم میں اگر بہتری لائی جائے تو اس طرح کی جو آج کل کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے, میرے خیال میں بہت سے جو پاکستانی ہیں جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب اس طرح کی جیسے آج عید میلاد النبی ہے تو موبائل فون کی سروس آف ہو جاتی ہے, پھر یہ تو روزمرہ کی زندگی کی بالکل جسے کہتے ہیں نا اب نیڈ بیس بن گیا ہے. خدا نہ خواستہ پھر ابھی محرم گزرا ہے اس میں آپ نے دیکھا سارے جو ہے موبائل سروسز آف تھی, تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے, خدا نہ خواستہ بیزاری کی طرف نہ لوگ چلے جائیں. کیا کرنا چاہیے؟ نصاب تعلیم میں تبدیلی لائیں, اسلامی نجاتی کونسل کو متحرک کریں, اتحاد بین المسلمین کو زیادہ فروغ دیں.
گزارش ہے جی کہ بڑی اچھی نشاندہی فرمائی ہے بزرگوں نے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپریہنسو پیکج ہونا چاہیے تربیت کا اور اس ماحول کو واپس لانے کا جس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر گھر کا ماحول ہے
جی,
اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ہے اس یا باقی جو اخبارات کے اسپیشل ایڈیشن چھپتے ہیں ان کے سارے ورک میں کیا تصویریں ہوتی ہیں اور کس چیز کی طرف تربیت کا رخ ہے, اور جو بیرونی فلمیں ہیں جو ٹیلیویژن کے اوپر چلتی ہیں, جو ڈرامے چلتے ہیں, کیا وہ کوئی شریف آدمی اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دیکھ سکتا ہے؟ اور جب چھوٹے بچے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ کتنا منفی اثر پڑتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے, آزاد ہونا چاہیے, لیکن میڈیا ایک اتنا مؤثر ایک ذریعہ ہے, اس کو اصلاح کے لیے بہتری کے لیے استعمال ہونا چاہیے.
ٹھیک,
اور اس میں اضافی بات یہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس موبائل کے ذریعے سے سہولتیں بھی ہیں اور بیماریاں بھی بہت پھیل رہی ہیں, جرائم میں یہ استعمال ہو رہا ہے, خواتین کے اغوا میں یہ استعمال ہو رہا ہے, فحاشی کے لیے استعمال ہو رہا ہے, لیکن اس کی رکاوٹ بالکل نہیں کی جا رہی. گھر کا ماحول خراب ہوگا तो आप कैसे ये कहेंगे जी कि ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कोई किरदार अदा नहीं किया? उसका बड़ा एक महदूद रोल था, लेकिन वो रोल भी उसको अदा नहीं करने दिया जाता। और तरीकाकार ऐसा बनाया गया है कि 5 साल में वो रिपोर्ट पेश करेंगे, 2 साल उस पर बहस होगी, फिर 2 साल और लगेंगे जिस पर वो उसको उसके कानून साजी की जाएगी उसके मुताबिक।
ओके,
तो ये 10 साल का जो नुस्खा है उसमें वो चीजें ही भूल जाती हैं, इश्यूज ही बदल जाते हैं।
लेकिन निसाब तालीम की जो बात हुई राजा साहब, उसमें अगर तब्दील लाई जाए तो आप इन नौजवानों का कहा, उसमें ऑब्वियसली मीडिया का भी रोल है।
मैं समझता हूँ कि उससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।
ये जो हमारी तंग नजरी है वो खत्म हो सकती है,
ये बहुत कुछ उसमें कमी आ सकती है, माहौल को बदला जा सकता है।
तो ये तो राज साहब मसाद एहतराम ये आप लोगों के करने के काम है ना?
बिल्कुल करने के काम है, हुकूमतों के करने के काम है, लोगों की आवाज उठाने के काम है, प्राइवेट स्कूलों के भी कायम है, वो भी अदारे मौजूद हैं, वो अपना एक अलग सिस्टम बनाया हुआ उन्होंने जिसमें कोई आदमी मुदाखलत ही नहीं करता।
ठीक,
वो कहाँ से निसाब कहाँ से तय कर जाता है और उसका रुख कैसे बदला जाता है?
लास्ट में मैं आप सबसे चाहूंगा कि 30 सेकंड से बताएं कि आज की नशिस्त को जब हम बर्खास्त करने जा रहे हैं तो हम क्या पैगाम देना होगा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ कोई हम आगे बढ़े ताकि हम आपस में तो ना लड़े ना, हम मतलब अंदर से अगर खुदा ना खास्ता हमें खतरा लाहक है तो बाहर के चैलेंजेस का कैसे मुकाबला करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम यू राजा साहब।
जी के ये एक माहौल पैदा करने की जरूरत है।
ठीक है,
जिन जिन अदारों में जिन मदरसों में ये इस किस्म की तरबियत दी जाती है, नफरत की तरबियत दी जाती है, उनकी इस्लाह करने की जरूरत है।
ठीक है,
और अगर बाकी बात करने से वाज करने से वो सही नहीं होते तो कानून को इस्तेमाल में लाना चाहिए, लेकिन इस सिलसिले को जरूर बंद करना चाहिए।
बंद करना चाहिए,
जो ये जहर फैलाया जा रहा है इसको खत्म करना चाहिए।
एग्जैक्टली इब्राहिम साहब,
मैं तो राजा साहब ने जो शुरू में इकबाल का शेर कहा था मैं वही कहूंगा, ब मुस्तफा बिरसान खेशरा की दीन हम ओस्त, अगर ब ऊ न रसीदी तमाम बुला हबीस। और इकबाल ने एक और शेर में ये बात कही थी कि तू हमीदानी के आईने तू चीस्त, जेरे गर्दून सिर तमकीने तू चीस्त। पूछता है मुसलमान से कि तू क्या जानता है ये कि तेरा आईन क्या है और आसमां के नीचे तेरे इख्तदार और इख्तियार का रास क्या है? वो जवाब देता है आन किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत उ ला यज़ालस्तो कदी।
बहुत खूब शेरी साहब,
देखिए 2-3 में तजावीज देता हूँ
क्योंकि
इसी कम वक्त में। एक ये कि तमाम मसालिक के उलमा को एक दूसरे की में जाकर भरपूर एक दूसरे के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए।
शुरुआत आप कर रहे हैं,
ठीक है, हम तैयार हैं।
ठीक है,
हम तैयार हैं।
ठीक,
दूसरी बात मदारिस के निसाब के हवाले से, मदारिस में तदरीस के हवाले से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं अपने दूसरे फिरकों के मदरसों में जाऊं और उनको चाहिए कि हमारे मदरसों में आए, क्योंकि बुनियादी तौर पर मसाइल यहीं से पैदा होते हैं। तीसरी बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि जहां पर भी तखरीबी अनासर कोई भी कदम उठाते हैं वहां पर हुकूमत पूरी तरह से अपनी रिट कायम करे और मुजरिम को इबरत का निशान बनाए
और
मुजरिम को अपने सियासी मफादात के हुसूल का जरिया ना
कतन इस्तेमाल करें और जो कम्युनिटीज हैं वो फिर पीछे ना आए किसी भी शख्स के।
बिल्कुल,
ये भी होना चाहिए। जैसे राजा साहब ने कहा, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका कि आपने हमारे साथ नशिस्त की। अमीर शहीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, चूंकि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सारी गुफ्तगू हुई तो गुफ्तगू को इसी तरह समेटेंगे कि मेरे ख्याल में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है उसी को हम अगर अपने लिए एक गोल बना लें, ऑब्जेक्टिव बना लें और उसी पर इकट्ठे हो जाए तो बहुत से हमारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। और एंड में मैं क्लोज इसी तरह करूंगा, बड़ी अच्छी मैं नात सुन रहा था तो उसके शेर थे, जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, काश मिल जाएं हम सब नाम मोहम्मद के सबब। मेरे ख्याल में इस पे अगर हम फॉलो करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शख्सियत है जो हर किस्म के तासुब, हर किस्म के जिसे कहते हैं फर्क से बालातर है, उन पे अगर हम इकट्ठे हो जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। प्रोग्राम सिस्टम में हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से जरूर लाजिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद
तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए चुनिनों चुना तुम्हारे
मुल्क भर में 3 साल में 200 ब्रांचें और 3 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा देने वाला वाहिद बैंक सिंध बैंक। मुल्क के 104 शहरों में सिंध बैंक की ब्रांचें। शहरों के लिए खुसूसी प्रोडक्ट्स के साथ साथ कॉरपोरेट और इंफरादी सार्फिन के लिए पेश कीमत सहूलियत बमें SMS बैंकिंग पेश करती हैं और जल्द इस्लामिक बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग। सिंध बैंक कराची तक कश्मीर तरक्की बेनजीर।
صلوا عليه